नमस्कार, जनसत्ता परिवार की ओर से सभी सुनने वालों को होली की बहुत सारी बधाइयाँ। आपके जीवन में खुशियों के रंग घुलते रहें। हर साल हम और आप यूं ही होली पर पॉडकास्ट सुनते और सुनाते रहें। होली आई है कहानी में। अब तक आपने सुना कि होली को लेकर कहानी के किरदारों में कितनी उत्सुकता है। अब आगे की कहानी सुनिए। जिंदगी में पहली बार उसे इतना कुछ एक साथ मिला। वो फिर आने के लिए कहकर वापस चला गया। फिर उनके मिलने का एक सिलसिला चल पड़ा। दोनों के बीच की झिझक मिट गई, दूरियां सिमट गई। उसका तो जैसे जीवन ही बदल गया था। वो उसे जब भी बाहों में भरकर चूमता, उसे लगता कि जैसे किसी ने जीवन भर का तनाव खींच लिया हो, जैसे देह वीणा पर किसी ने हाथ धर दिया हो। उसके अधरों का कोमल एहसास उसके देह में शोले भड़का देता। अजीब सी बेचैनी, अजीब सा खुमार, फिर गजब संतुष्टि, गजब सुख। इस सुख से वो सर्वथा अपरिचित थी। जल्द ही वो बहुत पास आ गए। एक दिन भी नहीं मिलते तो तड़पने लगते। कोई पर्दा नहीं रह गया था दोनों के बीच। प्रेम के नए नए बहाने ढूंढते, घर में कोई उपस्थित हो तो भी उसकी आंखें बचाकर मिल लेते। किचन हो या सीढ़ी या फिर और कोई सुरक्षित कोना, गले लग जाने के लिए पर्याप्त होता। फिर तो जैसे नशा ही छा जाता। पूरे समय जैसे वो नशे में झूमती रहती। दीन दुनिया की उसे कोई चिंता नहीं रह गई थी। एक दिन वो पूरी तरह मिलने की बात करने लगा कि अब और दूर नहीं रह सकता। वो भी शायद यही चाहती थी, पर वो हर बार उसे रोक देती। उसने कहीं पढ़ा था कि मंजिल तक पहुंचते ही प्यार कम हो जाता है। पहले सी उत्सुकता कशिश नहीं रहती, वो आवेग खुमार नहीं रह जाता, और यही तो उसे अच्छा लगता है। पर नदी को अंततः समुद्र से मिलना ही होता है। अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिटाना ही होता है, तभी उसे सार्थकता का आभास होता है। अभी की इच्छा में उसकी भी इच्छा शामिल हो गई थी। क्या ये चाहत गलत थी? दुनिया तो इसे पाप ही कहती, पर वो कहता ये पाप नहीं, प्यार है। वो भी जानती थी कि देह और मन अलग नहीं होते, फिर उसका मिलन कैसे गलत है। उसके जीवन में कोई पुरुष नहीं था। वर्षों से त्याग तपस्या का जीवन जी रही थी। क्या प्रकृति ने उसे इतना सुगठित रूप, सौंदर्य, यौवन इसलिए दिया था कि वो इसे यूं ही खत्म कर लेती? प्याले में लबालब भरा दूध बच जाए तो उसे नाली में बहा देने से तो अच्छा ही है कि वो किसी भूखे के पेट में जाए। पाप पुण्य की परिभाषाएं सबके साथ एक सी नहीं हो सकती। उसे भी सुख पाने का अधिकार है। वो सुख ढूंढने कहीं बाहर तो नहीं गई थी। सुख खुद उसके घर आया था। फिर वो उसे क्यों दुत्कार देती? शायद ईश्वर को उसके अकेलेपन पर तरस आ गया हो। शायद ईश्वर खुद अभय के रूप में उसे सार्थक करने आया हो। कितना अजीब था, जब 10 वर्ष पूर्व उसका पति अपनी पूर्व प्रेमिका से विवाह कर उसे छोड़ गया था तो उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था। पर अब अभय के उसके घर आने जाने पर लोग पीठ पीछे टिप्पणी शुरू कर चुके थे। स्त्री के लिए ये समाज आज भी कितना क्रूर है। उसे या तो पत्थर की देवी समझता है या फिर उल्टा। पर वो इन दोनों छवियों से अलग थी। वो एक जीती जागती हाड़ मांस की इंसान थी, जिसमें इच्छाएं होती हैं, जज्बात होते हैं। वो जीना चाहती थी अपनी मर्जी से। वो किसी को धोखा नहीं दे रही थी, किसी का कुछ छीन नहीं रही थी। वो दुविधा में थी तो बस इसीलिए कि अभी की जिंदगी में एक और लड़की थी, जिसका पता उसे बहुत बाद में चला था, वरना वो अभी के साथ इतना आगे नहीं बढ़ी होती। अब पीछे लौटना मुश्किल था, पर किसी का हक छीनना उसने कभी नहीं सीखा था। वो लड़की अभय की मंगेतर थी, 5 वर्षों से उससे जुड़ी थी और उसे बहुत प्यार करती थी। पता नहीं अभय उसे कितना प्यार करता था, पर वो उससे ही विवाह करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। वो ये बात भी जानती थी कि अभय जीवन भर के लिए उसका नहीं हो सकता, उसे एक दिन जाना ही है। पर वो कल के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, वर्तमान का नशा उस पर हावी था। वो तो ये भी नहीं सोच पा रही थी कि अपनी भावी पत्नी को धोखा देकर उसके पास आने वाला उसे कभी भी छल सकता है। आखिर एक दिन अभय चला गया, जाना ही था, पर इतनी जल्दी और इस तरह चला जाएगा उसने सोचा तक ना था। एक झटके में वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। उसने उसके विश्वास, उसके प्रेम, उसकी भावना की कुर्बानी दे दी, वो भी महज अपने शुद्र स्वार्थ के लिए। वो कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने आई उसकी चचेरी छोटी बहन पर आसक्त हो गया। हालांकि इसमें बहन का भी बड़ा हाथ था। उसके मना करने पर वो विरोध पर उतर आया और एक दिन गुस्से में चला गया तो फिर कभी नहीं लौटा। वो तो उसकी भावी पत्नी के लिए खुद को मना चुकी थी, पर उसकी इस लंपटता को वो नहीं सह पाई। तो क्या उसका पहला आंकलन ही सही था कि अभय एक लंपट पुरुष है? क्या उसे अकेली स्त्री जानकर उसके पास आया था? क्या उसके लिए देह ही एक सच था? शायद हाँ। शांति ने एक बार उससे कहा भी था, वो स्त्री को करीब से जानना चाहता है। भावी पत्नी विवाह पूर्व उसकी इजाज़त नहीं देती तो इधर उधर भटकता रहता है। उसने सोचा था उसे पाकर उसकी भटकन समाप्त हो जाएगी, पर नहीं, उसने साबित कर दिया कि आदतें नहीं बदलती। उसके बाद भी वो दूसरी स्त्रियों में रुचि लेता रहा, उन्हें शिकार बनाता रहा। बहन के मामले में तो उसने हद ही पार कर दी। वो उसके ही घर में उसके ही सामने उससे संबंध बनाना चाहता था। उसने बहन को वापस भेज दिया तो नाराज़ हो गया। जाने कैसे उसने सोच लिया था कि वो उसके साथ के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, पर वो इतनी कमज़ोर नहीं थी। वो कहता था कि वो उसके जैसी बने, क्षणों में जीने वाली, जहाँ और जिसके साथ रहे उसी के साथ मस्त, पर वो उसके जैसी नहीं हो सकती थी। कितना प्यार किया था उसने अभी से, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, यही लोक परलोक, दीन धर्म सब, हर जगह बस उसे ही देखती थी, उसी में जीती थी। फिर भी वो चला गया। उसका अपराध था तो बस इतना कि वो जितनी उसकी थी उतना ही उसे अपना बनाना चाहती थी, पर वो किसी का नहीं था, ना हो सकता था, भविष्य में भी शायद ही हो सके। किसी का होने के लिए जिस समर्पण की ज़रूरत होती है वो उसमें नहीं था। वो सोचता था दे देना ही पर्याप्त है। वो नहीं जानता था कि देह में मन आत्मा जैसी चीज़ भी होती है। प्रेम में धूर्तता, चालाकी, स्वार्थ और दुनियादारी जैसी चीज़ें नहीं होती। उसमें ये चीज़ें नहीं थी, तभी तो वो प्रेम कर सकी। पर वो तो सब कुछ साथ लेकर चलता रहा। जब भी वो इन सबसे अलग रहा वो उसे देव पुरुष लगा, बेहद अपना लगा, प्रेम कर सका। पर जब भी दुनियावी छायाएं उसके साथ रही वो बेहद अश्लील, कामुक और शूद्र लगा। वो उसका ये रूप देखकर तड़प उठती थी, अवसाद में चली जाती थी। शायद यही उसका असली रूप था, शायद सभी पुरुष उसके जैसे होते हैं। वो प्रेम नहीं करते, बस प्रेम का खोल चढ़ाए रहते हैं। वो कहते हैं प्रेम करते हैं, मरकर ही अलग हो सकते हैं, पर सब झूठ होता है। अभय भी एक झूठ था, फिर भी वो उसे प्रेम करती रही। शायद इसे ही मृग तृष्णा कहते हैं। प्रेम रूपी जल का आभास उसे भी दौड़ाता रहा था। आज फिर होली है। वो घर की खिड़की से कॉलोनी में होली खेलते लोगों को देख रही है और सोच रही है कि वो भी उनमें शामिल हो जाए। आखिर कब तक अभय के चले जाने का गम मनाएगी? होली बार बार हमजोली की तरह नहीं आएगी। वो उमंग में भरकर बाहर निकली और कुछ ही देर में रंगीन हो गई। अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर 1 बजे होली आई है कहानी का दूसरा भाग आपको सुनाएंगे। बने रहिए जनसत्ता के साथ। और हाँ, रंगों का त्यौहार है, एंजॉय भी करिए।